پیسہ خرچ نہیں رہے گا. یہ سرکار کا فیصلہ ہے, اور یہ جو سرکار کا فیصلہ ہے وہ چھتیس گڑھ کی سرکار نہیں, بھارت سرکار کا فیصلہ ہے. بھارت کی سرکار کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو چکتسا کا خرچ ہوتا ہے یہ بجٹ کا گھاٹا بڑھاتا ہے, اور سرکار کا یہ ماننا ہے کہ ہم جو چکتسا پہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے ہمیں واپس کچھ نہیں آتا. تو سرکار کا یہ کہنا ہے کہ گھاٹے کا کوئی کام ہم 2009 کے بعد نہیں کریں گے, کوئی بھی کام جو گھاٹے کا ہے وہ سرکار نہیں کرے گی. تو سرکار نے تین چھیتر چنے ہیں جو 2009 کے بعد سرکار ان کو چھوڑنے والی ہے. پہلا چکتسا کا چھیتر ہے, اس میں بجٹ کا کوئی پیسہ نہیں آئے گا. دوسرا چھیتر انہوں نے چنا ہے سکشا کا. 2009 کے بعد اس دیش کے اسکول اور کالجز کے لیے کوئی فنڈس نہیں دیے جائیں گے سرکار کی طرف سے. جتنے بھی اسکول کالج چلیں گے سب کو اپنے پیسے خود اکٹھے کرنے پڑیں گے, جن کو وہ کہتے ہیں سیلف فائنینسڈ یا سو وت پوشت, اپنے ہی ویوستھا خود کرنی پڑے گی سبھی اسکول اور کالجز کو, انکلوڈنگ یونیورسٹی. وشو ودیالوں کو سرکار کہہ رہی ہے کہ فنڈس نہیں ملیں گے 2009 کے بعد. انٹرمیڈیٹ کالجز ہیں, کالجز ہیں, ڈگری کالجز ہیں, پرائمری اسکولس ہیں, کسی کو بھی پیسے نہیں آئیں گے 2009 کے بعد, کیونکہ سرکار کا یہ کہنا ہے کہ سکشا کا جو خرچ ہے اس میں سے سرکار کو واپس کچھ نہیں ملتا. اور ایک تیسرا چھیتر ہے کرشی کا چھیتر, جو 2009 کے بعد سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم وہاں بھی کوئی پیسہ خرچ نہیں کریں گے. اب چکتسا ہے, کرشی ہے اور سکشا ہے, یہ تین چھیتروں میں بھارت سرکار ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرے گی, یہ سرکار نے طے کر لیا ہے. آپ بولیں گے یہ منموہن سنگھ کی سرکار نے طے کر لیا ہے, ایسا نہیں ہے, سبھی سرکاروں نے طے کر لیا ہے. منموہن سنگھ کی سرکار ہے یہ تو سنیوگ ہے, اگر یہاں اٹل بہاری واجپئی کی سرکار ہوتی تو بھی یہ نہیں ہونے والا ہے. اور اگر آپ اٹل بہاری واجپئی کی سرکار کی جگہ مان لیجئے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی سرکار بنائے سی پی ایم کی اور جیوتی بسو کو پردھان منتری بنا دیں تو بھی یہ فیصلہ ہے. یہ فیصلہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ فیصلہ بھارت سرکار کی ایک مجبوری میں سے آیا ہے, اور اس مجبوری کا نام ہے ڈبلیو ٹی او ایگریمنٹ, وشو ویاپار سنگھن سمجھوتا. ہمارے دیش کی سرکار نے ایک ڈبلیو ٹی او ایگریمنٹ سائن کیا ہے, ہم سب جانتے ہیں, 1994 میں. اور اس ڈبلیو ٹی او ایگریمنٹ میں 2000 شرطیں ہیں, ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس پورے کے پورے سمجھوتے کو 2009 کے سال تک لاگو کر دو. تو سرکار اس کو دھیرے دھیرے لاگو کر رہی ہے, 2009 میں وہ پورا لاگو ہونا ہے. تو پورا لاگو ہونے کے لیے 2000 شرطیں اس میں ہیں, تو ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ بھارت کی سرکار ایسا کوئی کام نہ کرے جس میں لابھ نہ ہو, جس میں ریٹرنز نہ ہو, ایسا کوئی کام نہ کرے. کیوں؟ اگر سرکار ایسا کوئی کام کرتی ہے جس میں لابھ نہیں ہوتا, ریٹرنز نہیں ہوتے ہیں, تو وہ کام جو ہے بجٹ کا گھاٹا بڑھاتا ہے, بجٹری ڈیفیسٹ اس سے ہو جاتا ہے, فزیکل ڈیفیسٹ بڑھتا ہے, ریونیو ڈیفیسٹ بڑھتا ہے, فائنینشیل ڈیفیسٹ بڑھتا ہے. تو سرکار ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے بجٹ کا گھاٹا بڑھے. تو سرکار نے سوچی بنائی ہے کہ ایسے کون کون سے کام ہیں جو ہم کو بند کرنے پڑیں گے. تو اس میں سب سے پہلا کام ہے چکتسا کا خرچ. سرکار یہ کہے گی کہ 2009 کے بعد جو کچھ بھی اس دیش میں ہوگا وہ پرائیویٹ کمپنیوں کے دوارا یا نجی سنستھاؤں کے دوارا یا نجی اسپتالوں کے دوارا یا نجی ڈاکٹروں کے دوارا, یہی سب کے دوارا جو ہوگا وہ چکتسا کا خرچ ہے. سرکار کا خرچ اس میں شونیہ ہونے والا ہے. سکشا میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نجی کالجز چل رہے ہیں, پرائیویٹ کالجز ہیں, پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, صرف وہی کام کریں گے. سرکار کے دوارا چلنے والے سبھی کالجز اور اسکولس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ 3 سال کے اندر اپنی ویوستھا کر لو. بہت سارے کالجز اور اسکولس کو فنڈس تو بالکل بند ہو گئے ہیں, اور آپ کی جانکاری کے لیے نئے اسکولس کھلنا بند ہو گئے ہیں. سبھی راجیوں میں نئے اسکول کھولے نہیں جا رہے ہیں. سرکاروں کو آدیش ہے اوپر سے, راجیہ سرکاروں کو, کہ آپ کوئی بھی نیا اسکول ایسا مت کھولیے جس میں سرکار کا پیسہ جائے. کسی کو اسکول کھولنا ہے تو اس کو کہیے تمہاری طاقت سے اسکول چلا سکتے ہو تو کرو, سرکار اس میں کوئی مدد نہیں کرے گی. تو چکتسا, سکشا اور کرشی. کرشی میں سرکار کہہ رہی ہے کہ کسان مرے یا زندہ رہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے, کسانوں کے لیے ہم پیسہ خرچ نہیں کر سکتے. तो अब सरकार के सामने दूसरा विकल्प क्या है, चिकित्सा शिक्षा ये तो बंद कर दो, इसमें सरकार का खर्चा मत करो, सरकार का खर्चा कहीं और करो जहां से इनकम हो। तो कहां करो, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुलवा दो, वहां से इनकम होने वाली है। तो शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे, तो सरकार के पैसे से शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुलेंगे, होटल्स खुलेंगे, लेकिन स्कूल नहीं खुलेंगे। हॉस्पिटल खुलेंगे, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं खुलेंगे जहां 10 रुपए में आप दवा पाते हैं, हॉस्पिटल ऐसे खुलेंगे जहां 10,000 रुपए में आपकी चिकित्सा हो। एस्कॉर्ट खुलेगा लेकिन सरकारी दवाखाना नहीं खुलेगा। एस्कॉर्ट में आप जाइए, 50,000 खर्च करिए, 5,00,000 खर्च करिए, ये सरकारी दवाखाने में आकर हम जो अभी इलाज करा लेते हैं ना कि हमारा पैथोलॉजिकल टेस्ट 50 रुपए में हो जाता है, किसी भी सरकारी दवाखाने में हम जाएं तो खून की जांच हो जाती है, पेशाब की जांच हो जाती है, कुछ भी जांच आप करा लो 50 रुपए में। अब ये नहीं होगा 2009 के बाद। 2009 के बाद अगर खून की जांच करानी है तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, 10,000 खर्च करिए, 20,000 खर्च करिए, जांच कराइए। अभी हम सरकारी दवाखाने में जाते हैं और मुझे कोई चेस्ट इन्फेक्शन है और एक्सरे निकलवाना है तो अभी भी 25-30 रुपए में निकल आता है। तो सरकार कह रही है 2009 के बाद ये बंद हो जाएगा। आपको एक्सरे निकालना है, जरूर निकालिए, किसी बड़े हॉस्पिटल में जाइए। सरकार का ये स्टैंड है कि हम अपनी तरफ से चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए और कृषि के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें से रिटर्न्स नहीं आते हैं, लाभ नहीं मिलता है। हम पैसा खर्च करेंगे वहां जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, यहां से पैसा मिलेगा। हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने हैं, उसमें पैसा लगाना है, वहां से हमें रिटर्न्स मिलेगा। हमें बहुत बड़े बड़े एरियाज मल्टीनेशनल कंपनीज को बेच देने हैं क्योंकि वहां से रिटर्न्स मिलेगा। तो सरकार अभी हो गई है व्यापारी, एक शब्द में मैं ये कहूं। व्यापारी वही करता है जहां से लाभ की उम्मीद हो। व्यापारी ऐसा कोई काम नहीं करता जहां लाभ ना मिले। लाभ नहीं मिले तो वो धर्मार्थी काम होता है। तो सरकार अपना धर्मार्थी स्वरूप 2009 में खत्म करने जा रही है और हमारे संविधान में एक शब्द लिखा हुआ है, उसको खत्म करने की पूरी तैयारी है। वेलफेयर स्टेट नहीं रहेगा अब ये देश 2009 के बाद। और केंद्र सरकार ने इसके लिए सर्कुलर भेजना शुरू कर दिया है। अभी थोड़े दिन पहले मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जाने का मौका मिला तो मैंने वो सर्कुलर पढ़ा। वहां के डायरेक्टर ने मुझे कहा, देखो राजीव भाई, आप बोलते थे ये बात 1998 में, अभी ये हमारे सामने आ गई है। मैंने ये कभी 1998 में कहा था कि अगर WTO एग्रीमेंट लागू होगा तो ये चीज होने वाली है। तो वो कहते हैं, हाँ आपने हमको 98 में बोला था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में चिट्ठी आ गई है कि अगले साल से पगार को छोड़कर कोई भी फंड्स नहीं आएंगे। वो कहते हैं कि हमको रिसर्च करनी है, उन्होंने कहा रिसर्च आप मत करो, प्राइवेट कंपनियां रिसर्च करेंगी, जरूरत है तो खरीद लो उनको। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो चिट्ठी आई है, वैसी ही चिट्ठी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आ गई है। और जब मैंने इसका कन्फर्मेशन किया तो भारत के फाइनेंशियल सेक्रेटरी बोलते हैं कि ये बिल्कुल सच है, 2009 के बाद फिस्कल डेफिसिट बढ़े, फाइनेंशियल डेफिसिट बढ़े, बजटरी डेफिसिट बढ़े, ऐसा कोई काम सरकार नहीं करेगी। माने सेवा के सब काम, कल्याण के सब काम सरकार अब बंद कर देगी। अब प्रश्न उठता है कि जब भारत की सरकार ये सब बंद कर देगी तो लोगों का क्या होगा। आज हमारे भारत देश की जो परिस्थिति है वो ये कि 110 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, इनमें से पूरी ताकत लगा के मात्र 33 करोड़ लोग ही हैं जो चिकित्सा ले सकते हैं, मात्र 33 करोड़। और वो तीनों चारों पांचों सब तरह की चिकित्सा ले सकते हैं, एलोपैथी की ले सकते हैं, होम्योपैथी की ले सकते हैं, आयुर्वेद की ले सकते हैं, नेचुरोपैथी की ले सकते हैं, योग प्राणायाम सीख सकते हैं। 33 करोड़ लोगों की ही ताकत है कि वो कोई भी चिकित्सा ले सके। बाकी के जो 77 करोड़ लोग हैं उनके पास तो कोई भी चिकित्सा लेने की ही ताकत नहीं है। अब चूंकि उनकी चिकित्सा लेने की ताकत नहीं है तो वो ओझा के पास जाएंगे, गुनिया के पास जाएंगे, किसी न किसी के पास जाएंगे, उसमें उनकी मजबूरी है। अब हम उनको ये बोलेंगे वो मूर्ख है, महामूर्ख है, वो एक अलग विश्लेषण हो सकता है, लेकिन उनकी ताकत ही नहीं है। कि वो रायपुर शहर तक आ सके और कोई चिकित्सा करवा के अपने गांव वापस जा सके, क्योंकि ये जो 77 करोड़ लोग हैं इनके बारे में भारत के राष्ट्रपति महोदय जो वर्तमान में डॉक्टर अब्दुल कलाम है, उन्होंने एक सर्वे कराया और इस सर्वे को लेकर वो सांसदों के साथ बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा है। डॉक्टर अब्दुल कलाम का 5वां साल है ये और थोड़े दिन में वो रिटायर होने वाले हैं, दोबारा चुने जाएंगे मालूम नहीं, लेकिन 5 साल में उन्होंने एक सर्वे जरूर करा दिया है, इस देश को आईना दिखाने के लिए। उन्होंने जो सर्वे कराया है वो ये बताता है कि 77 करोड़ लोग भारत में इस स्थिति में रहते हैं जिनको रोज पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता है, और उन 77 करोड़ लोगों में डॉक्टर अब्दुल कलाम के सर्वे के अनुसार 25 करोड़ लोगों की ताकत इतनी कम है जो एक दिन में 15 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। 25 करोड़ लगभग 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 1.5 रुपया खर्च नहीं कर सकते, और 10 करोड़ लोगों की गरीबी इतनी भयंकर है जो एक दिन में 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते, उनको 2 समय खाने का कभी भी भोजन नहीं मिलता। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ये जो सर्वे कराया वो इंडियन स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट की मदद से कराया, और वो सर्वे बोलता है कि भारत में कुल 21 करोड़ परिवार हैं, उनमें से 14 करोड़ परिवारों के पास झुग्गी झोंपड़ियां हैं, घर भी नहीं है, जिनको घर कहा जाए ऐसी स्थिति में भी वो नहीं रहते, तो वो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं। तो इतनी भयंकर गरीबी में इस देश के 77 करोड़ लोग रहे हैं, उनकी चिंता है कि वो क्या करेंगे 2009 के बाद। अभी तो हम ये मान लेते थे कि कहीं प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सरकार का दवाखाना है, वो वहां जा सकते हैं, 2-5 रुपए की कुछ गोली मिल गई, डॉक्टर ने उनकी मदद कर दी तो कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन 2009 के बाद वो भी खत्म होने वाला है। भारत की सरकार मालूम है सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर को रिलायंस को सौंपने जा रही है, टोटल प्राइवेटाइजेशन, रिलायंस चलाएगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को। अब रिलायंस वालों से मैंने पूछा आप कैसे चलाएंगे, तो उन्होंने कहा हम ये सब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को हॉस्पिटल में बदल देंगे। तो ठीक है, हॉस्पिटल में तो बदल देंगे, फीस का क्या होगा, बिना फीस के इलाज होगा? उन्होंने कहा नहीं, फीस तो लेनी पड़ेगी, मिनिमम 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए से कम में तो हम चला नहीं पाएंगे कोई भी हॉस्पिटल, क्योंकि हमें डॉक्टर रखना है उसको 10,000 की पगार देनी है, 5 डॉक्टर रखने हैं 50,000 की पगार देनी है, हॉस्पिटल बढ़िया बनाना है, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, एयर कंडीशनर उसमें, लिफ्ट भी लगानी है, सब कुछ फैसिलिटीज देनी है, तो 500-1000 रुपये फीस तो देनी ही पड़ेगी। तो माने गांव का गरीब आदमी जो 10 रुपये फीस दे के कभी कल्पना करता था कि इलाज करा ले, वो अब संभव नहीं है। सरकार की योजना है कि अगर सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर को रिलायंस ना चला सके तो अपोलो को दे दो, कुछ एस्कॉर्ट्स को दे दो, कुछ अपोलो को दे दो, कुछ रिलायंस को दे दो, कुछ किसी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी को दे दो, तो ये सारी बड़ी कंपनियां लाइन में लगी हुई हैं, एक एक करके इनको एक एक एरिया मिलने वाला है, वो एरिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो ये कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें से रिटर्न लेंगे। रिलायंस की पॉलिसी है कि हम 1 रुपये लगाएंगे तो 3 रुपये लेने हैं हमको इसमें से, नहीं तो हम 1 रुपया क्यों लगाएं। अपोलो की पॉलिसी है कि 1 रुपया लगेगा तो 4 रुपये लेंगे उसमें से, रेड्डीज लेबोरेटरी वाले कहते हैं कि 1 लगाएंगे तो 2.5 रुपये तो चाहिए कम से कम हमको रिटर्न के रूप में। माने अब तक जो चिकित्सा का कार्य, सेवा का कार्य था, वो अब व्यापार बनेगा, पूरी तरह से व्यापार बनेगा। दूसरा क्या होगा, सरकार ने कंपनियों को खुली छूट दे दी है कि जो दवाएं आप बाजार में बेचते थे और जिन पर सरकार के ऊपर से कंट्रोल था, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, आप जानते हैं डॉक्टर पाठक इस बात को अच्छे से समझेंगे क्योंकि एलोपैथी के डॉक्टरों को ये मालूम है, सरकार की तरफ से दवाओं के ऊपर कीमत का कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो सरकार ने अब खत्म कर दिया, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर निकाल दिया, तो कंपनियों ने दवाओं के भाव 2-3-4 गुने बढ़ा दिए, कुछ कुछ दवाओं के भाव तो 100 गुने बढ़ गए, 100 टाइम्स बढ़ गए। कैंसर के ट्रीटमेंट की जो दवाएं आज से 3-4 साल पहले जिस कीमत पर थी, आज उनकी कीमत 3-4 गुनी 5 गुनी तक बढ़ गई है, 500% दाम बढ़ गए। और बाजार में जो सस्ती दवाएं मिलती थी ना 10-20-50 पैसे की टैबलेट, वो सब गायब हो गई, सब आउट हो गई, और कंपनियों ने इतनी चालाकी किया है कि उनके थोड़े मॉलिक्यूल्स बदलकर वही दवाओं को नए नाम से डाल दिया है, लेकिन उसके दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि आदमी खरीद भी ना सके, गरीब आदमी तो सोच भी ना सके। پہلے تین چار سال سے میں کچھ دواؤں کا ادھین کر رہا ہوں. ایک دوا ہے کوریکس کف سیرپ ہے, ہر تین مہینے میں اس کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے, ہر تین مہینے میں بھاؤ بڑھ جاتا ہے. اور میں چار سال میں دیکھا ہے اس کا بھاؤ 650% بڑھ چکا ہے کوریکس کف سیرپ کا, 650%. اب جو کمپنی یہ بناتی ہے ان کو میں بی سی یو چٹھی لکھ چکا ہوں کہ آپ مجھے اس کا کارن بتائیے کہ ہر تین مہینے میں آپ اس کا بھاؤ کیوں بڑھاتے ہیں. کہتے ہیں جی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, تو ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو بھاؤ کیوں بڑھا رہے ہیں اس کا؟ تو کہتے ہمیں معلوم ہے یہ دوا کیا کیا کام میں آ رہی ہے. جو دارو باز لوگ ہیں نا وہ بھی کورے سے گٹا گٹ پی رہے ہیں, ہانسی مٹانے کے لیے تو پی ہی جا رہی ہے لیکن دارو پینے والے بھی پی رہے ہیں تو وہ بھاؤ بڑھاتے جا رہے ہیں, منافع ان کو مل رہا ہے. کوریکس بنانے والی کمپنی بولتی ہے کہ ہماری 50 دواؤں کے دھندے کو بند کر کے ہم نے یہ کوریکس چالو کر دیا. تو کمپنی بھی بازار میں اتری ہے ویاپاری بن کے, اب اس کے دماغ میں سیوا نہیں ہے, اس کو پیسے کمانے ہیں. اور ساری بڑی بڑی ودیشی کمپنیاں اس لیے آ رہی ہیں جن کے یہ دروازے کھلے ہیں. تو کمپنیاں ویاپاری, سرکار بھی ویاپاری, اور ڈاکٹر تو ویاپاری ہیں ہی, جو آپ تھوڑی دیر پہلے سویکار کر چکے ہیں. ڈاکٹروں میں ویاپار کرنے کی پرورتی اتنی زبردست ہو گئی ہے جس کا ادھارن سنو دیکھو تو شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ کوئی بےچارہ آ گیا پیٹ کے درد کا مریض, اس کو دے دیا اینستھیسیا, لٹا دیا, کڈنی کاٹ کے نکال لیا, 2,00,000 روپے میں بیچ دیا. اب ڈاکٹر کے یہاں جب کڈنی کاٹ کے نکال کے بیچ دیا 2,50,000 روپے میں, وہ مریض سیدھا سادہ بھولا بھالا, اس کو کچھ پتا نہیں, اس نے تو یہ سوچ کے آپریشن کرایا کہ پیٹ کا درد ٹھیک ہوگا, معلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے کڈنی کاٹ کے نکال دیا. اب اس کو 10-12 سال پتا بھی نہیں چلتا کیونکہ ایک ہی کڈنی سے کام چلتا رہتا ہے. 10-12 سال بعد پتا چلا, کوئی ڈاکٹر نے بتایا تمہاری تو ایک کڈنی ہی نہیں ہے, تب وہ سوچتا ہے کہ یہ گئی کہاں. تب وہ بولتا ہے میں کسی ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, میرا آپریشن ہوا تھا تو نکال لیا اس ڈاکٹر نے, اب کروں گا کیا, اور بیچ دیا اس میں 2,50,000 روپے. اس لیول کے ویاپاری ہیں ڈاکٹر. ویاپار بھی ہوتا ہے نا, اس کی بھی ایک گریما ہوتی ہے, یہ تو گریما کے بھی نیچے اترے ہوئے ہیں بیچاری. کوئی بھی بھولی بھالی سیدھی سادی گاؤں کی مہیلا آ جائے گربھاوستھا میں بنا سیزر اس کا اگر بچہ پیدا ہو جائے تو ڈاکٹر مانتا ہے کہ میری تو ناک ہی کٹ گئی جو نارمل ڈلیوری ہو گئی. سیزر تو ہونا ہی چاہیے, زبردستی ہونا چاہیے, کمپلسری ہونا چاہیے. تو ڈاکٹر ویاپاری, سرکار ویاپاری, کمپنیاں ویاپاری, پھنس گیا تو یہ بےچارا کسٹمر, یا آپ اس کو کہیے گراہک, یا اچھے شبدوں میں کہیے بھارتیہ ناگرک, جو دیش کا ناگرک ہے وہ تینوں ویاپاریوں کے بیچ میں پھنس گیا, وہ کرے کیا, وہ علاج کیسے کرائے, چکتسا کیسے پائے. اس وشے پر ڈاکٹر عبد الکلام کے ساتھ گھنٹوں ہم لوگوں نے مگز ماری کی. جب ان کا سروے ختم ہوا نا تو انہوں نے دلی میں ایک میٹنگ بلائی تھی دیش بھر کے لوگوں کو, میں بھی چلا گیا اس میں, مجھے بھی بلا لیا کہ اب بتاؤ کیا کریں گے, سرکار تو یہ بند کر دے گی. اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر میں بھی پردھان منتری ہو جاؤں تو میں بھی یہی کروں, کیونکہ ڈبلو ٹی او کی کنڈیشن ہے, ڈبلو ٹی او میں اگر ہم ہیں تو ہم کو یہ ماننا ہی پڑے گا, یا تو ہم ڈبلو ٹی او چھوڑیں, سمجھوتا رد کر دیں, تو پھر راستہ ہمارے لیے کھلا ہے. اتنی طاقت ابھی ہندوستان کے کسی نیتا میں نہیں ہے کہ وہ ڈبلو ٹی او چھوڑ دے, کمیونسٹ نیتاؤں میں بھی نہیں ہے, ان سے بھی بات کر کے ہم نے دیکھ لیا. تو بی جے پی, کانگریس, جنتا دل, سی پی ایم, سی پی آئی سب ڈبلو ٹی او کے ساتھ میں ہے. مانے کوئی بھی پردھان منتری آ جائے, منموہن سنگھ کو ہٹا دو, کسی کو بھی لا دو, وہ ڈبلو ٹی او کی شرطیں آنے ہی والی ہیں, تو سرکار تو اس میں سے جانے ہی والی ہے. تو یہ تینوں چھیتروں کا 100% پرائیویٹائزیشن ہونے ہی والا ہے. پرائیویٹائزیشن کا ایک ہی مطلب ہے, جس کے پاس پیسے ہیں اس کو چکتسا ملے گی, اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو کچھ نہیں ہونے والا, وہ مرے گا بنا دوا کے. تو ہماری چنتا یہ ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کا کیا ہو, اس چنتا میں یہ پریچرچا آیوجت ہوئی ہے. اور یہاں پہلی بار ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے, دیش بھر میں میں جگہ جگہ یہ پریچرچا کر رہا ہوں پچھلے 1.5-2 سال سے. سبھی 35 کے ڈاکٹروں کو بلانا, ان کے ساتھ بیٹھنا, دماغ لگانا, برین اسٹارمنگ سیشن کرنا, کچھ راستہ نکالو اس میں سے. تو کہتے ایک ہی راستہ ہے راجیو بھائی, یہ ڈبلو ٹی او رد کرا دو. اب ڈبلو ٹی او رد کرنے کے لیے بھی تو ہم ہندوستان میں کوئی بڑا ابھیان چلائیں, لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جن جاگرتی کر کے کھڑا کرے سرکار کے خلاف, وہ مجبور کرے تو سرکار ڈبلو ٹی او کینسل کرے. اس میں جتنا سمے لگے گا مجھے اندازہ ہے, کیونکہ گاندھی جی کو اس دیش کو کھڑا کرنے میں 45 سال لگ گئے, جبکہ ان کی تپسیا ہم سے کئی گنی زیادہ تھی. उनकी तपस्या इतनी बड़ी थी कि अफ्रीका के हीरो होके आए थे इस देश में, तब भी 30 साल लग गए। 1915 से काम शुरू किया था और 1945 में जाके थोड़ा परिणाम दिखाई दिया था कि हाँ भारत आजाद हो सकता है। हम तो उनकी चरणों की धूल के बराबर नहीं, ना हमारी इतनी तपस्या है ना इतनी तेजस्विता है। तो गांधी जी को देश खड़ा करने में इतने साल लग गए, तो हमको कुछ समय तो लगेगा, WTO रद्द कराना हो और जो कराना हो, तात्कालिक क्या किया जाए। तब दिमाग में एक प्रश्न आया, उसका समाधान अभी उनके व्याख्यान से हुआ। पांडे जी ने जो बोला ना कि इस भारत में जो चिकित्सा ले सकते हैं 33 करोड़, उनको जो मर्जी है वो करें, वो एलोपैथी में जाएं, होम्योपैथी में जाएं, आयुर्वेद में जाएं, नेचुरोपैथी में जाएं, रामदेव बाबा के पास जाएं, मुरारी बापू, कहां जहां जाना है जाएं, 33 करोड़ है उनके पास पैसे हैं, वो जहां जाना हो जाएं। लेकिन हमारी समस्या उन 77 करोड़ की है, वो क्या करें। या तो आप उनको छोड़ दीजिए कि वो ओझा के पास जाएं, गुनिया के पास जाएं, और ओझा और गुनिया उनका जो करना है करें, तो फिर हम रोएं क्यों उनके लिए। और या उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें। तो हम लोगों के दिमाग में एक बात आ रही है कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था अगर उनकी करनी हो, एक विकल्प तो ये है कि वो मरे मरे, हमसे क्या लेना देना, एक है कि नहीं उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था हम कर सकते हैं क्या। तो फिर हम सब मिलकर बैठे और कोई ऐसा रास्ता निकालें कि ये 77 करोड़ लोग अपने जीवन में कभी बीमार पड़े तो कुछ तो ऐसा करें कि उनका कुछ रास्ता हो जाए, समाधान हो जाए। इस दृष्टि से ये परिचर्चा है। अब इसमें क्या हो सकता है, पांडे जी का व्याख्यान मैं बड़े गौर से सुन रहा था तो उनकी ये बात मेरे समझ में आई कि देखो भैया, आयुर्वेद तो जीवन शैली है, ये चिकित्सा व्यवस्था नहीं, ये जीवन शैली है। तो क्या ये आयुर्वेद की जीवन शैली उन 77 करोड़ लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं कि भैया तुम ये जीवन शैली में आ जाओ तो तुम्हें पैसे खर्च करने ही नहीं पड़ेंगे। ये है बात। अगर हम आयुर्वेद को जीवन शैली मानते हैं कि ये जीवन जीने की कला है, ये हमारी जीवन शैली है, ये प्रकृति और मनुष्य के आपस के संबंध पर आधारित है। अगर प्रकृति 5 तत्व की है तो मनुष्य भी 5 तत्व का है, तो मनुष्य और प्रकृति के आपसी संबंधों पर आधारित अगर ये जीवन शैली है तो हम क्या इस जीवन शैली को 77 करोड़ लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये है छोटी सी बात। मुझे लगता है कि शायद पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं, मान लीजिए हम सब एक साथ मिलकर बैठे और एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करें और ये ध्यान रखें कि भारत के मनुष्य की जीवन शैली में कहां टूट आई है, कहां रुकावट आई है जिसके कारण वो बीमार पड़ रहा है। अगर हम ये ढूंढ लेते हैं तो हम शायद उसका समाधान उस तक पहुंचा सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि देख भैया, तेरी जीवन शैली में ये गड़बड़ आई है, तू इस गड़बड़ को ठीक कर ले तो तू वैसे ही ठीक हो जाएगा, दवा की जरूरत ही नहीं, तेरे पास भले पैसे नहीं है दवा खरीदने के, तू जीवन शैली कैसे जीनी है वही सीख ले। मान लीजिए इस जीवन शैली के कुछ प्रमुख तत्व हैं, तो वो प्रमुख तत्व 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 हम लिख डालें, सरल भाषा में उनके पत्रक बनाएं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बांग्ला, आसामी, सब भाषाओं में बनाएं। करोड़ों की संख्या में इस देश में दानवीर हैं, उनके पास जाएं कि भैया 10,000 पत्रक आपके नाम से, 20,000 आपके नाम से, 1,00,000 आपके नाम से, 2,00,000 आपके नाम से, नीचे लगे तो लाइन दे दो, नहीं तो ऐसे ही बोल दो। तो ऐसे अगर करोड़ 2 करोड़ पत्रक हम छपा के उन लोगों तक पहुंचा सकें जिनकी जीवन शैली हमारे आयुर्वेद की जीवन शैली से मिल जाए तो शायद उनका समाधान इसमें से हो जाए। इसमें हम सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। मान लीजिए आयुर्वेद कुछ बताता है, यूनानी कुछ बताता है, होम्योपैथी वाला भी कुछ बता सकता है कि ये चीज इसमें डाल दो, और एलोपैथी वाले भी कुछ बता सकते हैं कि हाँ हाँ ये चीजें कुछ इसमें आ जाए, तो वो एक कंप्लीट बन जाए। और वो 1 पन्ने का हो, 2 पन्ने का हो, 4 पन्ने का हो, 10 पन्ने का हो, और वो हम छपा के निःशुल्क बिना किसी शुल्क के करोड़ों की संख्या में स्थानीय भाषाओं में उन तक पहुंचाएं जिनको उसकी जरूरत है, और पहुंचाने का काम करें उसके साथ साथ उस पर उनसे संवाद हो। जैसे गांव गांव में रामकथाएं होती हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है, महाभारत की कथाएं होती हैं, 60 साल से चल रही हैं राम की कथाएं, महाभारत की कथाएं, मैं भी बचपन से सुनता रहा हूं, आप सब सुनते रहे हैं। तो ये राम कथा कहने वाली और कृष्ण कथा कहने वालों को कहा जाए भैया ये स्वास्थ्य की कथा भी कह दो जरा इसमें, राम की कथा वो सुनते हैं, पता नहीं दूसरे राम पैदा होंगे, होंगे भी नहीं होंगे, कृष्ण की कथा सुन रहे हैं दूसरे कृष्ण होंगे, होंगे भी कि नहीं होंगे मालूम नहीं है, लेकिन ये स्वास्थ्य की कथा कह दिया तो उसका जीवन तो सुखी हो जाएगा। तो हमारे आजादी बचाओ आंदोलन और हिंदू स्वराज अभियान की ये तैयारी है कि अगर आप जैसे विशेषज्ञों की मदद से हमारे पास ऐसी कुछ सामग्री आ जाए जो 2-4-5-10-20 पन्नों में छप जाए, स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेशन की गारंटी हमारी है, देश भर में भीख मांगेंगे उसको छापने के लिए वो भी जिम्मेदारी हम लेते हैं, पहुंचाएंगे भी हम, लेकिन वहां तक वो बात पहुंच जाए, उसको ये मालूम हो जाए कि जीवन में ये करने से मैं स्वस्थ हो जाऊं। और इस विषय पर पिछले 2-3 वर्षों से मैं जितने विशेषज्ञों से मिला, जैसे एलोपैथी के कई विशेषज्ञ मुझे बोलते हैं कि राजीव भाई 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं तो वो बिना दवा के ठीक हो सकती, 90%। अगर 90% बीमारियों को बिना दवा के एलोपैथी वाले ठीक कर सकते हैं तो फिर आयुर्वेद वाले पीछे क्यों रहे, होम्योपैथी वाले पीछे क्यों रहे, वो यूनानी वाले क्यों रहे, और ये सब मिलके हो सकता है सबको ही ठीक कर ले 1% छोड़ के, एक्सीडेंटल केसेस को छोड़ दिया जाए तो हो सकता है सभी को ठीक कर ले, सभी के पास कुछ ना कुछ विशेषज्ञता है। तो आप सब विशेषज्ञों की मदद से हमको एक पत्रक बनाना है, देखिए ये आज की परिचर्चा का मूल उद्देश्य ये है, एक पत्रक बनाना है, चाहे बुकलेट कहिए चाहे पत्रक कहिए, वो हमें इस हिसाब से बनाना है कि 77 करोड़ लोग जो कोई दवा नहीं खरीद सकते इस देश में और 2009 के बाद खरीद भी नहीं सकेंगे, उनका क्या होगा, उस दृष्टि से हम वो बनाएं और उसमें 10-20-50-100-200 बातें लिखें, लिखने के बाद उन तक उनकी भाषा में पहुंचाएं। तो रामकथा कहने वालों की मदद से कि भैया ये स्वास्थ्य कथा कह दो, महाभारत कथा कहने वालों की मदद से ये थोड़ी सी कथा कह दो, मुरारी बाबू को मैं जाके कभी भी निवेदन करूंगा वो मान जाएंगे कि 10 मिनट इसी पे बोल दो, आसाराम बापू को कहूंगा आप भी बोल दो, रामदेव जी तो बोल ही रहे हैं, ऐसे जैन संतों से हम कहें, जैन संतों के कई संप्रदाय हैं, दिगंबर हैं, श्वेतांबर हैं, मूर्ति पूजक हैं, डेरावासी हैं, उनको हम कहें, इस्लाम को मानने वाले जो उनके उलेमा हैं, मौलाना हैं, जो रोज मस्जिद में व्याख्यान देते हैं, हर शुक्रवार को तो मैंने सुने ही है कि बड़े बड़े व्याख्यान होते हैं, उनसे कि भैया ये स्वास्थ्य कथा भी कह दो थोड़ी सी जो उसकी जिंदगी चलाने में मदद करती है। तो इस्लाम में या हिंदुओं में जो भी मुख्य हैं, जो समाज को कभी कभी दिशा देने का काम करते हैं, उनकी मदद से यही सब पत्रकों में लिखी हुई बातें रोज रोज बोलना सुनना बोलना सुनना, तो ये बैठ जाएगी दिमाग में, ये बैठ जाएगी तो शायद वो अपने स्वास्थ्य का खुद हल निकाल देगा। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में 2009 के बाद चिकित्सा की शायद इतनी जरूरत नहीं, चिकित्सकीय ज्ञान की थोड़ी जरूरत हो सकती है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं चाहिए, हेल्थ एजुकेशन चाहिए। हेल्थ फैसिलिटीज जितनी हैं आगे भी बढ़े ठीक है चलती रहे, लेकिन हेल्थ एजुकेशन अगर मिलने लगे और सरल आसानी से मिलने लगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम हम कर पाएंगे। और संकट के समय में समाज की किसी समस्या का समाधान अगर हम नहीं दे पाए तो सभ्यता हमारी दे पाए, संकट आ रहा है हम देख रहे हैं 3 साल के बाद, अगर इस संकट में हम इस समस्या का कोई समाधान दे पाते हैं, वो आयुर्वेद की मदद से हो, यूनानी की मदद से, होम्योपैथी, एलोपैथी, योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी, किसी की भी मदद से हो या सबकी मदद से हो, तो हमारी तो इच्छा हो है कि हम इस समाधान की तरफ बढ़े। आप सभी रायपुर के निवासी यहाँ हैं, सुधी हैं, थोड़ा भी अगर आप इसमें कुछ मदद कर सकें तो करें। क्या मदद कर सकते हैं, मान लीजिए हम ये 20 पन्ने की एक पुस्तिका बनाते हैं या 10 पन्ने की बनाते हैं, तो इसमें ज्ञान के रूप में क्या डालना उसमें आप एक मदद कर सकते हैं, और ये बनने के बाद हम आपको दे दें कि भैया ये बन गई है, ये उसका मॉडल है, आप उसको 10,000, 20,000, 25,000 अपने नाम से छपाओ, अपनी संस्था के नाम से छपाओ और वहां बांटो जहां चिकित्सा पहुंचती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, एक वैद्य जी को अभी मैं मिला पुणे में, उनकी उम्र 84 साल की है, उन्होंने मुझे कहा देखो तुमको अगर ये काम करना है तो उन्होंने मुझे कहा बाघ भट्ट की 2 पुस्तकें पढ़ो, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह, तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया अब वो पढ़ते पढ़ते मुझे उसमें से ऐसी अद्भुत बातें मिली है जो मैं मानता हूं कि अगर वो ही आदमी पालन करने लगे तो जिंदगी भर निरोगी रहे। उसमें से तीन चार बातें मैंने ले ली। एक जगह बाघ भट्ट जी लिखते हैं संस्कृत में है, बड़ी सुंदर बात है कि ऐसा कोई भी भोजन मत करो जिसको सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं हुआ हो। हाँ, सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श नहीं हुआ हो ऐसा कोई भी भोजन मत करो तो स्वस्थ रहोगे। तो जिस दिन मैंने ये पढ़ा, आज से दो साल पहले की बात है, मैंने दो साल से सोचना शुरू किया कि ये चक्कर क्या है सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श। तो बहुत दिन के बाद समझ में आया कि फ्रिज में रखा हुआ भोजन मत करो, क्योंकि फ्रिज एक ऐसी चीज है जिसको ना सूर्य का प्रकाश मिलेगा ना पवन का स्पर्श मिलेगा। तो मैंने दो साल से फ्रिज की चीजें खाना बंद कर दिया और उसका मुझे अपने जीवन में इतना लाभ हुआ है जो मैं किसी को भी जोर जोर से चिल्ला के बोलता हूं कि भैया फ्रिज का पानी कभी मत पीना। फ्रिज की रखी हुई कोई चीज मत खाओ। मेरे यूरोप और अमेरिका में बहुत दोस्त हैं क्योंकि मैं बहुत घूमता रहा हूं, मैंने उनको भी बोलना शुरू किया और उनकी भी समस्याएं हल हो रही हैं। मैं जब भी यूरोप जाता हूं तो मैं देखता हूं कि उनकी एक बहुत भयंकर समस्या है। कोई भी यूरोपियन और अमेरिकन आदमी सवेरे जब टॉयलेट रूम में जाता है तो एक घंटे के पहले बाहर ही नहीं आता, एवरेज कभी कभी दो घंटे। और उनको पूछो भैया करते क्या हो तुम दो घंटे टॉयलेट रूम में, तो कहते जी न्यूज़पेपर पढ़ते, मैगजीन पढ़ते। क्यों पढ़ते हो? स्टूल पास नहीं होता, पेट साफ नहीं होता, कई बार कहते हैं जोर लगाते हैं फिर भी नहीं होता, गाना भी गाते हैं मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, आती नहीं। दो दो घंटे बैठते हैं और उसका दुष्परिणाम यह है कि उनके मुंह से बदबू आती है, शरीर में से बदबू आती है। शरीर की बदबू को छुपाने के लिए डिओडोरेंट स्प्रे करते हैं, मुंह की बदबू को छुपाने के लिए माउथ फ्रेशनर स्प्रे करते हैं। तब समझ में आया कि ये उनकी मजबूरी है, स्टेटस सिंबल नहीं। फिर मैंने कहा फ्रिज का पानी बंद कर दो और किया और सातवें दिन से पेट साफ होने लगा। तो मुझे लगा अष्टांग हृदय में बाघ भट्ट का लिखा हुआ एक सूत्र शायद करोड़ों लोगों की मदद करे। तो इस तरह की कोई एक छोटी सी पुस्तिका बने, पैम्पलेट बने, हम सबकी मदद से करोड़ों तक पहुंचे, इस दृष्टि से ये गोष्ठी का आयोजन है। हम इसमें जो कर सके करें, इसी भावना के साथ आभार, धन्यवाद।